الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات، دنیا میں گمراہی پھیلانے والے بے شمار ہیں، لیکن قرآن کریم نے صرف دو طبقوں کے متعلق خاص طور سے کیوں کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اور یہ ایمان والا ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر ثابت کرنی، اور پھر جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اس راستے پر میں چلتا رہوں سوائے دو طبقوں کے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میں مغضوب علیہم کا راستہ بھی نہیں چاہتا اور ضالین کا راستہ بھی نہیں چاہتا. تو جب دنیا میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں خود مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، اور اس کے بعد بھی ہر زمانے میں دنیا کی ہر قوم میں گمراہ کرنے والے، باطل پر چلنے والے پائے جاتے رہے ہیں، تو اللہ نے صرف انہی دو طبقوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی پھیلانے کا سب سے زیادہ کام یہی دو طبقے کرتے ہیں، اور اس وقت ساری دنیا کی ساری تباہیوں کی بنیاد یہی دو طبقے ہیں، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اور پچھلے 200 سال کی تاریخ میں ساری دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ یہی دو طبقے ہیں، چاہے وہ بدوی دنیا میں ہوں، چاہے وہ سیاسی دنیا میں ہوں، چاہے وہ معاشی دنیا میں ہوں، چاہے وہ تہذیبی دنیا میں ہوں، جہاں جس پہلو سے بھی دیکھیں گے تمام دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ المغضوب علیہم اور الضالین. اس صورتحال میں اب ہمیں ایک نقطے پر غور کرنا ہے، وہ یہ بہت قیمتی بات ہے، الحمدللہ آ گئی، اب اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر کسی مکان میں آگ لگ جائے تو سب کیا ہوگا؟ اس مکان کے جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی فکر مند ہوں گے، اس مکان کے جو جوان ہوں گے وہ بھی فکر مند ہوں گے، مکان کے جو مستورات ہیں وہ بھی سوچیں گے کسی نہ کسی طرح سے آگ ہم سے بجھ جائے، حتیٰ کہ مکان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر گھر کے بوڑھے یہ سوچیں کہ جو گھر کا خاندار ہے، جو گھر چلا رہا ہے، وہ کہیں گیا ہوگا، آئے گا خود ہی بجائے گا، ہم تو آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جیسے باقی سارے کام وہی انجام دیتا ہے، اس آگ بجانے کا کام بھی وہی کرے گا اور وہ کسی اور کام میں، اور جو باہر ہے وہ یہ سوچے کہ گھر والے تو موجود ہیں، گھر میں اگر آگ لگی ہے تو گھر والے مرد بھی موجود ہیں، بوڑھا بھی موجود ہے، مستورات بھی وہی ہیں، اور بچے یہ سوچیں کہ گھر چلانے والے خود ہی آئیں گے، خود ہی اس آگ کو بجائیں گے، تو نتیجہ ہوگا سارا مکان جلے گا اور بچیں گے نہیں. جب کسی جگہ آگ لگتی ہے تو اس وقت بوڑھا یہ نہیں دیکھتا کہ میں بوڑھا ہوں، جوان یہ نہیں دیکھتا کہ میں جوان ہوں، پڑھنے والا یہ نہیں سوچتا میں پڑھائی میں لگا ہوا ہوں، بچے یہ نہیں سوچتے ہم چھوٹے ہیں اور ہم سے کیا ہوگا، نہیں، ہر طبقہ فکر مند ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر سارے طبقے فکر مند نہ ہوئے تو آخر میں پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ کہ گھر کے خاندار، سب لوگ تانا اگر دیں گے تو خاندار کو تانا دیں گے. اس وقت یہاں کی جو صورتحال ہے، جو صورتحال تھوڑی سی کارگزاری کے ذریعے بھی معلوم ہوئی، اور آپ کو جو کتابچہ ملے گا اس کتابچے میں پوری طرح سب سمجھ جائیں گے، جبکہ حالات اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں. پتہ جب ایک مسلمان اپنے گھر میں عیسائیوں کے شعار کا نشان لگا کر فخر محسوس کر رہا ہے، جب مسلمان فخر کے ساتھ کہہ رہا ہو کہ میں اب عیسائی بن چکا ہوں، جب مسلمان فخر کے ساتھ لکھتا ہو اپنی ڈائری پر یا اپنے پرچے پر آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، یا آج میرے لیے میرے اندر نیا جوش پیدا ہوا کیونکہ میں اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا، جب یہ واقعات سامنے ہوں، اور یہ ایک آدھ نہیں ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کے حالات ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، اور قرآن صدیوں سے پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ آگ لگنا ہی ہے، اور یہ تو اللہ کا منشا تھا کہ یہ کھل گیا، ورنہ تو صورتحال یہ کہ اگر کچھ عرصہ اور ایسے چلتا تو اللہ بچائے تھا، ہو سکتا تھا آگے چل کر کے کہتے کہ صاحب یہ کھل کر کے کہتے ہم اتنے لوگ عیسائی ہیں، جیسے وہ رپورٹیں شائع کر رہے ہیں فلاں ضلع میں اتنے بن گئے، فلاں ضلع میں اتنے بن گئے، اور اس کے بعد ان تمام کو کسی ایک جگہ لا کر کے بسائیں اور ساری دنیا اگر ان کا تحفظ کرتی. تو یہ آگ تو ہے لگی ہوئی، اس میں کوئی دوہرا نہیں. اب اس آگ کے بجھانے کے لیے بوڑھوں کو بھی کوئی فکر نہیں، عورتوں کو بھی کوئی فکر نہیں، बच्चों को भी फिक्र नहीं, ले जाकर घर का खानदार है, वही खानदार है हमारे आज के उलमा और वही खानदार है मसाजिद के आइमा। बाकी तमाम तबकों के मुतालिक उम्मीदें रखें, किसी से कोई उम्मीद नहीं। बेहिसी का दौर है, ईमान के जौफ का जमाना है, बल्कि ईमान के बेचने का दौर है। या तो दीन का काम करेंगे तो अपने ही पहले रुकावट बनेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है। आलमी सतह पर जो दुनिया के कौमों के लिए और मुसलमानों के लिए जो पॉलिसियां मुरतब करते हैं, उनमें से किसी शख्स ने एक पॉलिसी मुरतब करते हुए पहले मुसलमानों को तजिया करके कहा कि मुसलमान दुनिया में चार किस्म के हैं। मुसलमानों का एक तबका वो है जो सिर्फ मसलूम के एतबार से तो मुसलमान है, लेकिन इस वक्त न उनका जहन मुसलमान, न उनके घर में इस्लाम, न उनकी जुबान पर इस्लाम। वो इस्लाम के खिलाफ उसी तरह से बोलते हैं जिस तरह से कोई इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन बोलता होगा। तो एक तबका तो वो है। दूसरा तबका मुसलमानों का वो है कि जिनको इस्लाम से अब ताल्लुक लफ्जों के हद तक है, क्या मुसलमान है, लेकिन आगे उनकी सारी चाहतें वो ये जो दुनिया के आम इंसान की चाहत है कि साहब मेरे पास अच्छा बिजनेस होना चाहिए, अच्छी मुलाजमत होनी चाहिए, दौरा जमा होने चाहिए, आज के जमाने की जो जदीद सहूलियात है वो सारी मिलनी चाहिए। इस्लाम कहीं तरक्की करता है तो उनको कोई उससे दिलचस्पी नहीं, और अगर इस्लाम को कोई नुकसान होता है तो उनको भी दिलचस्पी नहीं। ज्यादा ज्यादा कभी खुशी का इजहार करेंगे या ज्यादा ज्यादा लफ्जों के हद तक अफसोस करेंगे। दूसरा तबका मुसलमानों का ये है और अक्सरियत ही की है। ये अपने बच्चों को अच्छे से सुकून अच्छे स्कूल में पढ़ाने की फिक्र करेंगे, इससे उनको कोई गरज नहीं, उनके बच्चों का ईमान मिट जाए बिक जाए उससे कोई परवाह नहीं। वो हर वो काम करने के लिए तैयार होंगे जिससे उनको मादी तरक्की मिल जाए, चाहे उससे उनके दीन को नुकसान हो जाए, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। तो अक्सरियत इस तबके की है। और तीसरा तबका वो है कि जो जबान से कहता है मुसलमान है और शौक के साथ फख्र के साथ कहता है मुसलमान है, लेकिन हमारे इंसान इस्लाम कितना है, दो तीन रस्में हैं बस, इसके आगे उनके पास और कोई इस्लाम नहीं है। बच्चे होंगे तो खतना कर देंगे, बड़े हो जाएंगे तो कभी कभी मस्जिद में चले जाएंगे, बाजे उनमें से साल में एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बाजे हफ्ते की एक नमाज पढ़ते हैं, बाजे दिन में दो तीन मरतबा की नमाज पढ़ लेते हैं, और उनमें से कुछ लोग जो है वो हल्की सी दाढ़ी में रख लेंगे और कभी इजहार भी करेंगे हम मुसलमान हैं, और अगर कहीं इस्लाम को तरक्की होगी तो खुशी होगी और तबसरे भी करेंगे उस पर, और अगर कहीं मुसलमानों का इस्लाम का नुकसान होगा तो अफसोस होगा, उस पर तबसरे भी करेंगे। इससे आगे उनको इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक नहीं। ये रिवायती कदम के मुसलमान है, उस पर उसमें लिखा उन्होंने ट्रेडिशनल मुस्लिम। चौथा तबका एक और है, ये तुमको सफेद टोपियों की शक्ल में नजर आएगा, लंबी गाड़ियों की शक्ल में नजर आएगा, कहीं उनके हाथों में तस्वीरें होंगी। ये कहते हैं कि खुद भी इस्लाम पर रहना है, औरों को भी इस्लाम के साथ चलाना है, और इस्लामी सच्चा मजहब है। यही है वो खतरनाक तबका। इस खतरनाक तबके को मिटाने के लिए उन तीन तबकों को हम इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज है तो दीन के काम में रुकावटें अपने मुसलमान बनते हैं, वो इन तीन तबकों में से कोई एक होता है, और खुद उसे मालूम नहीं होता कि मैं किस तबके की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूं। अब जो सूरत हाल यह है कि सूरत हाल के अंदर किससे उम्मीदें वाबस्ता की जाएंगे कि वही जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का बाग लगाया। इस दीन के बाग लगाने में आपको यकीन था कि यह फैलेगा और इसकी खुशबू सारे आलम में पहुंचेगी, इसका फल सारे आलम में पहुंचेगा, लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन आपको यह भी मालूम था कि आगे क्या क्या होने वाला था, क्योंकि आप खातिमुन नबीयीन थे और कयामत तक के लिए अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई थी, इसलिए आपने कयामत तक पेश आने वाले तमाम अहम वाकयात को बयान कर दिया था। किताबुल मलाहिम, किताबुल फितन, किताबुल शातिस्तार, ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बयान किया हुआ वो बाब है, और किसी नबी ने यह बाब बयान नहीं किया, और न नबियों की जिम्मेदारी थी कि वो ये बयान फरमाएं, इसलिए उनको मालूम था कि बाद में नबी आने वाला है, वो खुद बताएंगे क्या कयामत के हद तक क्या क्या सूरत हाल पेश आएगी। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक पेश आने वाले तमाम वाकयात को बयान किया, तो आपने ये भी फरमाया कि ईमान वाले कैसे अपने ईमान को बेचेंगे। तो कमजोर ईमान, जब दीन कमजोर होने लगेगा उस वक्त जो उस दीन की हिफाजत के लिए उठ खड़े होंगे उनके बताए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने बहुत ही हौसला अफजा जुमले इरशाद फरमाए, जैसे कोई शख्स तमाम तबकों से मायूस होकर किसी एक तबके से उम्मीद वाबस्ता करे कि किससे मुझे उम्मीद है, शायद उस वक्त उस डूबती हुई कश्ती को यह बचा सकेगा, तो उस उम्मीद के साथ जो जुमले बोलता है बस, तो तकरीबन इसी तरह से आपने फरमाया कि हर बार के जमाने में जब दीन डूबने लगेगा, जब मिटने लगेगा, तो एक जमा जरूर खड़ी हो जाएगी जो उस वक्त मेरे दीन की हिफाजत का काम करेगी। आपने उनका नाम नहीं बताया, उनका कोई खानदान भी तय नहीं किया, वो तुमके काम से साबित हो जाएगा, काम से पता चलेगा कि ये है उस फर्क, उस तबके का फर्क है। वो कहीं का भी हो, वो किसी तबके का भी हो, किसी जुबान बोलने वाले का, लेकिन उसके काम से पता चलेगा कि हाँ, जब तमाम मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के तमाम तबका तब्दील दुनिया कमाने में, दुनिया पढ़ने में, उनकी सारी सरगर्मियां जो है वो दुनिया कमाने में और अपनी मादी चाहतें पूरी करने में, कि सब हमारी जिंदगी भी वैसी होनी चाहिए जैसे जैसे दुनिया की दूसरी कौमों की जिंदगियां हैं, वो लगे हुए होंगे और यही वो तबका होगा कि जो उस वक्त मेरे दीन को जो जरूरत होगी, जो तकाजा होगा, उस जरूरत और तकाजों को पूरा करने के लिए फिक्रमंद होंगे। या हमें हाजल इल्म इनको लिखा के नादूल हो, ईमान वाले के दिल में अगर जरा से भी ईमान के रमक, उसके दिल में तमन्ना भरनी चाहिए कि काश मेरा नाम इस तबके में शामिल हो जाए, कि जिससे जनाब रसूल अकरम साहब हमने उम्मीदें वाबस्ता फरमाई। ये आग जो लगी है इर्तदाद की, जो तो हम अपने माहौल में उसको सुनते हैं, बोलते हैं तो रह जाते हैं, लेकिन उम्मत का आम हाल जैसे हम सुन रहे थे कि उम्मत की सतह कितनी नीचे, तो वो इर्तदादी जुर्म करने के बावजूद को जुर्म मानने को भी तैयार नहीं, और उसके लिए कुछ अल्फाज धोखे के अल्फाज तुमको भूल गए हैं, ऐसा आप इस्लाम वाला वसी मजहब है, जो चाहे सो करो, इस्लाम वाला वसी मजहब है, उसके न कोई हदूद है न कोई कयूद है, और ये बातें सुनना भी उनको गवारा नहीं होती है, कड़वी लगती हैं। अब जब उम्मत का हाल ये हो तो उनसे क्या उम्मीदें कायम की जा सकती हैं कि वो इस इर्तदाद की सूरत हाल में उम्मत को इर्तदाद से बचाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। इसलिए कभी जब उम्मीद वाबस्ता होती है फला तबका ये करेगा, फला तबका ये करेगा, मीडिया वाले ये करेंगे, अखबार वाले ये करेंगे, वो सब बेचारे उसी आवेश से निकले हुए हैं, तो उनसे इस तरह की उम्मीदें न कायम की जा सकती है न उनसे कुछ होने वाला। वजाहतन अल्लाह ने पहले फरमा दिया है वक्त कसीर मिन अहले किताब वयरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानकुम, अहले किताब हमेशा सरगर्म रहेंगे, तुमको तुम्हारे ईमान से बाहर निकालेंगे। ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, यहूद और नसारा तब तक मुतमईन नहीं बैठेंगे जब तक तुमको तुम्हारे दीन से महरूम न कर दें, यानी तुमको तुम्हारे दीन से निकालकर अपने बातिल दीन में दाखिल न करें। तो कुरान ने पहले ही कहा और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात में बहुत सारी हदीसें हैं कि फरमाया कि किस तरह के ईमान वाला दुनिया कमाने के लिए अपने दीन को बेचेगा। मामूली युष्म रजुल मोमिन कोई से काफिर, सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर होगा। तो आग लगी हुई है और इस आग के लगने में, इस आग के लगने की पेशनगोइयां कुरान ने भी पहले फरमा दी हैं, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात हैं और वो हमारे सामने इरशाद है। और सोचने की बात है कि कश्मीर कुफ्रिस्तान था, यहां इस्लाम पहुंचा, जिस वक्त कुफ्रिस्तान था उस वक्त कोई चर्च नहीं, और जब इस्लाम दाखिल हुआ तब कोई चर्च नहीं, तो बीच में कौन सा दौर है कि जहां वहां पैसे चर्च खड़े हो गए, वो कौन सा मरहला आया, और उसके बाद से आज तक यहां हमारे फख्र के साथ लोग जा रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, कोई ईसाई ईद मनाने के लिए मुसलमानों के घर में नहीं आते, और मुसलमान फख्र के साथ जाएंगे गुलमर्ग उनके साथ क्रिसमस मनाने के। जब ईमानी सफा कमजोर होती है तो नौबत यहां तक पहुंचती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर जुमे को खुतबा जुमा में फरमाया करते थे अहसन हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका जिंदगी है, ठीक। और यहां से बाहर से एक आदमी आकर के कहता है मैं आपको तर्ज हयात सिखाऊंगा, आर्ट ऑफ लिविंग की क्या कहते हैं वो सिखाने, और हमारे सारे लोग पाए जाते हैं उससे आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए, और वो क्या कहता है आंखें बंद करो हाथियों लटकाओ उसके बाद आपको सहन का सुकून मिलेगा। वजह उसकी है कि दुनिया की कौमों के पास अब जमीनी सुकून की वो शक्ल रही ही नहीं है, इसलिए वो कभी आंखें बंद करते हैं, कि ऐसे जैसे छोटा बच्चा जो है उसको जब जब वो दर्द होता है तो तकलीफ होती दर्द होता है तो रोने लगता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है वो बेचारा बेहोश होता है, कहते बताओ आराम। तो ऐसे ही ये कहीं योगा कहीं मुस्लिम ये सारी चीजें कर करके क्या साहब आपको जहनी सुकून मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे चार साल के उसे आंखें बंद कराए योगा करा कह लगा बेटा आपको सुकून महसूस होगा, क्या हाँ जी मुझे सुकून महसूस, वो कौन सा बेचारा बेसुकूनी में था, जिस बच्चे का बाप नहीं है या जिस बच्चे की मां नहीं है, जो वालदेन से दूर है, वो जिस बेसुकूनी में आंखें बंद करने से वो सुकून थोड़े उससे हासिल होगा। लेकिन बच्चों का जो छोड़ दीजिए हमें बड़े जाकर के आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए पहुंचे थे संतूर होटल में, यानी ईमान वालों को यह होश नहीं रहा कि हमारे लिए आर्ट ऑफ लिविंग हमारा नबी सिखा चुका है पहले, और हर जुमे को वो कहते थे अहसन हदी हदी मोहम्मद सबसे बेहतरीन तरीके जिंदगी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीके जिंदगी, लेकिन यहां आकर हमें सिखाता है मैं आपको सिखाऊंगा तरीके जिंदगी। और मुसलमान सीखने के लिए पहुंचे और फिर तफसीर उससे भेजा, आपको कैसा लगा? कह रहे जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहां ठीक नहीं लगेगा कहना ये अच्छा नहीं लगा, तो जिनको अच्छा नहीं लगा वो भी नहीं कह पाए। इस तरह से क्रिसमस मनाने के लिए साहब कहां आएंगे? गुलमर्ग जाना है, और वहां वो शराब की रोटियां खाएंगे, उनके वो शराब की बोतलें पियेंगे और कहेंगे कैसा लगा साहब? कहेंगे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाइयों, जब हालात ये हों, इन हालात में अखीर में उम्मत को खिताब कहां से किया जाएगा? उसी मिंबर रसूल से। कोई और खिताब किसी और जगह से हो सकता है, लेकिन दीन का खिताब अगर होगा तो मिंबर रसूल से। इसलिए बार बार शुक्र पढ़ना चाहिए उस शख्स को जिसको अल्लाह ने मौका अदा किया, जिस सआदत मिलती है कि वो मिंबर में बैठता है, वो सआदत मिलती है कि वो नहरा पर खड़ा होता है। और बदबख्तियों की अलामत में से एक अलामत ये मानी गई कि अल्लाह ताला शाह ने कोई नियमत अता की हो और आदमी उसकी कदर न करे। ये बदबख्तियों की अलामत में से एक अलामत है कि आदमी को एहसास ना हो कि अल्लाह ने मुझे कौन सी नियमत अता की। ईमान नियमत और इंसान से उसकी कदर न हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखें नियमत और इंसान से उसकी कदर न हो। तो इमाम मिंबर पर बैठना, मिंबर पर बैठ करके अल्लाह के नबी की बात सुनाना उम्मत को। एक मुहद्दिस से पूछा गया कि अल्लाह के नबी की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, तो मुहद्दिस ने जवाब में कहा कि अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब हुजूर की बात सुनाई जाती है तो हुजूर को खुशी होती है कि मेरी बात बयान हो रही है। तो इमाम मिंबर पर बैठ करके अल्लाह के नबी की बात काल अल्लाह काल रसूल सुनाता, यहीं से दीन का खिताब होगा। इसलिए इन्ना हैदराबाद बस किसी को अपना मौजू बनाए, ईमान की हकीकत, उसकी अहमियत, उसके असरात, ईमान से महरूम होने के नुकसान, महरूम किन किन चीजों से आदमी ईमान से हो जाता है वो, और इसके बाद फिर आज के मुसलमान को अगर ये कहेंगे इन तालीमी इदारों में बच्चों को मत भेजो तो कल कोई ईमान साहब रहेगा ही नहीं मस्जिद में। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को तालीम इदारों में मत भेजो। आज ये कहना जिंदगी गुजारने के लिए, पहले जमाने में दूसरी माशी वसाइल थे, आज के जमाने में ये तालीम जरूरी है, उसके बगैर आप मुलाजमत नहीं कर सकते, उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसके बगैर आप सफर भी नहीं कर सकते। तो तालीम जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर मुश्किल। लिहाजा आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवाएं, मगर जब तालीम गाह का इंतखाब करें तो ऐसी जगह का इंतखाब न करें जहां आपके बच्चों को तालीम मिल जाए मगर इसका ईमान लुट जाए। ये अपने इन मुर्तजों को सुनाना कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए जब फिक्रमंद हैं और होना पड़ेगा तो ऐसी तालीम गाहों का इंतखाब करें जहां आपके बच्चों को तालीम भी मिले और उसके इस्लामी माहौल भी हो, कम से कम उसको नमाजें भी मिलें। सबसे बेहतर तो यह है कि ऐसी तालीम गाह हो कि जहां इस्लाम भी पढ़ाया जाता हो जरूरत के हद तक। अगर कि अब उम्मत इतनी नीचे जा चुकी है उनको यह भी पता नहीं कि इस्लाम का यही किताबों में समझे इस्तेमाल कुरान इस्लाम है, इतना ही है। बाद सुकून वाले बड़े फख्र के साथ कहते हैं जी हम तो इस्लाम भी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? तालिबुल इस्लाम। उन्हें समझे तालिबुल इस्लाम में सारा इस्लाम है, हालांकि मजाहिब में किसी मजहब के पास इतने उलूम नहीं है जितने उलूम इस्लाम के पास है, लेकिन यहां के मुसलमान तालीम याफ्ता मुसलमानों की इल्मी सतह कितनी है उन्हें समझे तालिबुल इस्लाम है। तालिबुल इस्लाम और आधा की जिंदगी कुल इतना ही इनका इस्लाम बेचारों। तो जब अपने मुर्तजों को बताएं कि अपने बच्चों की तालीम के लिए जब आप इंतखाब करेंगे तो ऐसे सुकून का इंतखाब करें जहां उस बच्चे को दीनी तालीम भी साथ साथ पढ़ाई जाए। जिम्न में ही सही, एक बहुत ही आखिरी दर्जे का पीरियड रखकर ही सही, मगर ये कि ऐसे सुकून का इंतखाब। और अगर आपने ऐसे सुकून का इंतखाब नहीं किया, किसी ऐसे सुकून का इंतखाब किया जहां पर कोई दीनियात नहीं पढ़ाई जाती, तो फिर वालिदैन से कहना अपने बच्चों पर रहम करो, ऐसा ना तुम्हारे घर में ये अफीस पैदा हो जाए। इन बच्चों की कदर आप इतनी फिक्र करो कि अपने घर में इनकी दीनी तालीम का इंतजाम करो। और फिर साथ में इमाम ये कह सकते हैं कि हम यहां अपनी मस्जिद में मकतब खड़ा करेंगे, लिहाजा तमाम इमाम ये जिम्न में बात है, तमाम इमाम अपनी मस्जिदों में मकातिब खड़े करें। इमाम हजरात ये न समझें कि हम सिर्फ पांच वक्त की नमाज पढ़ाने के जिम्मेदार हैं अल्लाह अकबर से रह करके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तक, इतना ही नहीं। सारी दुनिया में काम करने वाले, एक दावत का काम करने वाले बुजुर्ग हालात सुना रहे थे, कारगुजारी सुना रहे थे, कश्मीरियों में सुना रहे थे। उस कश्मीरी कारगुजारी सुनाते सुनाते उसने कहा, फलाना जमाना, बहुत पहले जमाने का बयान करते हुए उसने कहा, हम फलस्तीन गश्त कर रहे थे बैतुल मस्जिद में, بیت المقدس میں, تب اسرائیلی وہاں نہیں آئے تھے, ابھی بیت المقدس میں گشت کر رہے تھے, یہ مؤذن آیا صحیح سمجھے اذان پڑی, نماز میں وہ نہیں آیا. تو بعد میں اس مؤذن صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور اسے پوچھا بھائی آپ نے اذان تو پڑھی مگر آپ نے نماز میں تو تھے نہیں شاید آپ, اس نے کہا مجھے صرف اذان پڑھنے کی تنخواہ ملتی ہے, نماز پڑھنے کی نہیں ملتی. یہ کہہ رہے تھے اسی کے سزا اللہ نے دی کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ مسجد بلکہ اور تمہارے ہاتھ میں رہے, پہلے اپنے اندر پڑھائی پیدا کرو. وہاں ہر دیوار پر نعرے لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف مگر خود ان کی زندگی ایسی ہے, صرف اللہ تعالیٰ شاموں کا نعرے تمہاری زبانوں پر ان کے خلاف اور زندگی تمہاری ویسی ہی ہے. تو تمہارے نعروں کو میں دیکھوں گا, تمہاری زندگیوں کو دیکھوں گا. اس وقت امت کی حالت یہ ہے کہ زبان تو کہیں گے ہمیں محبت ہے اللہ کے نبی سے اور زندگی گزارے گی ہم یہود و نصارا جیسے, اور زبان سے کہیں گے ہمیں نفرت ہے یہود و نصارا سے ٹھیک, مگر عمل سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اب ان مستجوں کا سمجھا کے ساتھ ہم مکتب پڑھائیں گے, بچوں کو ضرور بھیجیں اپنے, جب تمہارے سکولوں میں بچے جاتے ہیں اور وہاں ان کے دین کی تحفظ کر تو کم سے کم جہاں مکتب کی تعلیم, اور پھر ان مسلمانوں کو بتائیں بار بار یہ سمجھانے کی کہ جن والدین کے بچے جہاں سے باہر ہیں چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں, وہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہو کر بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں, وہ ایک طوفان کے اندر وہاں ہیں, ہو سکتا ہے ان کا ایمان مان اٹھ جاتا ہو, ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. چنانچہ وہاں کشمیر کے کتنے ہی بچے ایسے تعلیمی اداروں میں ہیں جہاں ایک ایک گھنٹہ ان کو ہندوؤں کی پوجا پاٹھ میں بیٹھنا پڑتا ہے, اور جب بازوں نے اپنے والدین سے کہا یہاں یہ کرنا پڑتا ہے تو والدین نے یہاں سے کہا ابھی آکشن سمن بنی تلوار کار جو ڈگری آکشن سمن بنی, تو والدین یہاں سے کہہ رہے اس کی طرف توجہ مت کرو, خیر تمہیں ڈگری مل رہی ہے, وہ بےچارا بیٹھا ہوا ہند اس مہاسبھا میں بیٹھتا ہے اور وہاں وہ پوجا پاٹھ کرتے رہتے ہیں یہ چپ چاپ. اب اندر اس کی بی کی حالت کیا ہے, وہ بھجن کی مجلس میں جا بیٹھا. ہمارے علماء تو بار بار فتوا لکھتے رہے کیا کہ سر وندے ماترم کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا, ہمارے بچے نہیں, اور جب زبردستی وہاں حکومت نے نافذ کیا تھا کہ ہر سکون میں پڑھنا پڑے گا تو بابا علی نے آنا اور تمام دوسرے علماء سے مشورہ کر کے کہا, تمام مسلمانوں سے کہا جاتا اپنے بچے ٹکڑوں سے واپس نکالے, وہ بھاگ گیا تھے تو فوراً بچے واپس نکالنے شروع کیے, وہ قانون وہاں سے واپس ہو گیا. یہاں کے مسلمانوں کی سطح اتنی نیچے ہے کہ اگر یہاں کہیں گے یہاں الٹے اسلام میں چاہیں گے. اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ جن والدین کے بچے گھروں سے باہر ہیں, دوسرے علاقوں میں ہیں, دوسرے شہروں میں ہیں, دوسرے ملکوں میں ہیں, تو وہ والدین جیسے اپنے بچوں کی صحت تعلیم رہن سہن کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں, اور جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھیک ہیں, آپ کی صحت ٹھیک ہے, پیسے ختم تو نہیں ہوئے, کسی کی ضرورت تو نہیں ہے, اور ماں جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے میں بات کرتی ہے لیکن نہ باپ پوچھتا ہے نہ ماں پوچھتی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں, تو کسی غلط جگہ تو نہیں, کسی غلط تعلقات میں تو نہیں پھنسا, کوئی غلط چیز استعمال تو نہیں کر رہا ہے. کہ نہیں نہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ پوچھنا کوئی جرم لگتا ہے والدین کو, شیطان دھوکا گیا کیا سوم بچ ہے کیا خراب گئے سوال ہی چونا, یہ ممکن ہے نان ویج خراب وہ ڈوب چکا ہوتا ہے مگر یہاں والدین خوش فہمی میں ہمارا بچہ خراب نہیں ہوگا. یہ بات ان کو والدین کو سمجھانا کہ بھائی یہ تمہارا جوان بیٹا یا جوان بیٹی, ایک ایسی یہیں کشمیر کا ایک آدمی وہ فون کر کے کیا کہتا ہے کمرے میں پایا ان کو کہ کیا ہوا, کہ میں نے بیٹا اور بیٹی بھیجی تھی مدرس, لڑکا پھنس گیا ہندو لڑکی کے ساتھ, لڑکی پھنس گئی ہندو لڑکے کے ساتھ, میں نے یہاں سے کہا تھا بھائی یہ تو ہمارے اسلام کے خلاف ہے, انہوں نے وہاں سے کہا اس سے بھی اسلام اسلام مانا. یہ باپ یہاں سے پوچھتا ہے وہ کیا کرے گا, بچ جائے گا کہا کہ صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے بچے ایسے نکلیں گے. تو یہ تو والدین کی خوش فہمی ہے کہ صاحب ہمارے گھر کے اچھا ادھر سے والدین کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب, یہ ان والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مکتب قائم کرنا یہ الگ سے, اور ساتھ میں والدین کو سمجھانا کہ تمہارے بچے تمہارے ہی ہیں لیکن تمہارے سے پہلے یہ اللہ کی بندے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں, اب تمہارے گھروں میں یہ بچے اگر بگڑ جاتے ہیں تو آگے چل کر کے پھر ہو سکتا ہے یہ بڑا افسر بنے گا, ہو سکتا ہے یہ پیسہ کمانے والا ہوگا, مگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ دین کا دشمن بن کر کے آئے گا. اور اگر دین کا دشمن, ابھی دو یا تین سال پہلے ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ تو جب بھی اسلام سے اسلام قبول کیا تو بہت شوق کے ساتھ اسے اسلام فوراً پڑھ لیا, اسلام پر عمل کرنے لگا. اب اس کا انٹرویو آیا جی آپ سچا کر رہے ہیں, کہہ رہے میں پرانے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا رہا, چلے نئے مسلموں میں کام, نئے مسلموں میں کام کرنے کا نہیں, فی الحال یہ جو مسلمان یہاں دوسرا مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں ان مسلمانوں کو میں مسلمان بنا رہا ہوں. क्योंकि वो अभी इस्लाम पर कायम नहीं। लेकिन मुश्किल ये है कि वो वापस मुझे कहते हैं तू गलत है हम सही हैं, यानी वो जो मुसलमान पुराने हैं जो इस्लाम से दूर हैं उस नए मुसलमान से कहते हैं तू गलत है, कहता मैंने दाढ़ी रखी है सारे मुसलमान कहते हैं गलत है, मैं नमाज पढ़ता हूँ सारे मुसलमान कहते हैं गलत है, दीन चुन यू सहत चाहिए, मैंने कहा शराब मैंने छोड़ दिया, कहना चाहिए नहीं नहीं इतना इतना जो है फंडामेंटल्स नहीं बनना चाहिए, तो मुझे पहले समझाना पड़ता है भाई इस्लाम वो नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में है, इस्लाम वो है जो अल्लाह के नबी ने कहा। चुना जो वो सुना रहा था कि साहब मुसीबत ये पेश आई, एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा हमारी बेटी जो है वो फरार हो गई और फरार हुई तो मेरे शौहर से बात करो, उसके शौहर बुला करके लाया, क्या हुआ ये ले जी, मुझे पता चला कि मेरी बेटी के ताल्लुकात किसी अंग्रेज लड़के के साथ हैं, तो मैंने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। कैसे कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी जो है वो किसी घर के साथ ताल्लुकात कायम करे, बारह लोग बेटी को बुलाकर चला, कल का बेटी क्या हुआ है, कल का जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मैं उसके साथ हाउसों में रहती हूँ दिल्ली में रहती हूँ, मेरे बाप को क्या होता है, तो बाप से पूछे जी आपको क्या होता है, कल के इस्लाम के एहसास से गलत है, बेटी ने कहा जी इस्लाम क्या होता है, बाप से पूछते हैं जी इस्लाम इस्लाम होता है, हम मुसलमान हैं हम फलाने मुल्क मुसलमान मुल्क के रहने वाले हैं, बेटी ने कहा इससे पहले पूछो इस्लाम क्या है, तब वो बाप नमाज नहीं पढ़ता कभी रोजा नहीं रखता शराब पीता है सारी बुराइयां हैं, लेकिन बेटी के ताल्लुकात किसी और के साथ है तो वहां अपना इस्लाम जोश में आ गया। अब इस साहब ने कहा भाई जब इस्लाम ये है तो तुम नमाज भी पढ़ो शराब मत पियो, उसके बाद तुम्हारी बेटी पर इस्लाम नाफिज होगा कि गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात मत जोड़ो, और वो बेचारा मुसलमान रहकर हर साल किसी हर साल चंद रस्में पूरी करता था, उम्मत मुसलमान की हालत भी इतना ज्यादा तबाही की है, और इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ हम जिम्मेदार हैं कि हम दीन अपनी असल हालत में रखें सही बताएं, तो जब मुसलमानों को बताएंगे आपके जो बच्चे बाहर हैं उन बच्चों के बारे में आप चौका मार रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बच्चे वहां ऐसे माहौल में हो कि वहां उनका ईमान छिन चुका होगा उनको पता भी नहीं चलेगा। जो किताबचा यहां आपको दिया गया या दिया जाएगा उसमें देखें हालात क्या है और तदारुक की सबीलें क्या क्या हैं, वो जो तदारुक की सबीलें हैं बस वही अगर हम अपना पाते हैं, अगर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंका जा रहा था बच्चे आग में फेंका गया था तो एक चिड़िया दरिया से एक चौंस के बकर से पानी लेकर आती तो उसमें फेंकती थी, उसे पूछा गया कि तेरी एक कतरे से इसमें क्या होगा, उसने कहा ये तो मुझे मालूम है कि मेरे एक कतरे से ही आग बुझने वाली नहीं है, मगर इब्राहिम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं खामोश न बैठूं। बस इसी तरह से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलामियत का तकाजा यह है कि हम जितना हमसे हो सकता हो हम करेंगे, लोगों का ईमान बचाने की फिक्र, लोगों का दीन बचाने की फिक्र, और सही और सच्चा दीन बताना चाहे लोगों को कड़वा लगे, अगर कड़वा दीन कड़वा भी दीन मीठा है मगर कड़वे अंदाज में मीठे अंदाज में दीन सुनाना होता है, उसमें कोशिश करनी चाहिए नरम बनाकर मीठा बनाकर के दीन पेश किया जाए कड़वा बनाकर के नहीं, और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश के साथ साथ में हमारे अइमा हजरत और हम सभी इसमें शामिल हैं क्या हम जिसकी जरूरत है उसको पढ़ते नहीं है, मसलन इस वक्त ईसाई फैल रही है कल को अगर कोई लड़का मुकाबले में खड़ा होगा तो हमको पहले पता ही नहीं चलेगा ऐसा इसमें ईसाइत में, तो जरूरत के हद तक का मुताला जरूरी है, जितने भी गलत गलतियां हैं या जितने भी गलत मुहिमें चल रही हैं इन गलत मुहिमों को समझने के लिए जरूरी है पहले किताबों का मुताला करें, जो जो भी किताबों की कमी नहीं हर मौजू पर हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, जब दूसरे तबके वाले बड़ी से बड़ी मेहनतें करते हैं अपने बातों को फैलाने के लिए तो हम हक वाले क्यों मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए किताबें मुहैया करनी चाहिए पढ़नी चाहिए और जो करीब तर करीब में कोई आलिम हो उससे मिलते जुलते रहना चाहिए, और इस तरह से इल्मी सलाहियत भी पैदा करनी है इल्मी दर्जा भी आगे बढ़ाना है और अमली काम भी करना है। हमारे जरिए से अगर कोई एक शख्स ईमान पर जमा रहा या ईमान से महरूम हो गया था ईमान की तरफ वापस आ गया इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है, मशहूर जो फजाइल अमाल में हदीस सुनाई जाती है फजाइल अमाल में बार बार सुनते भी हैं सुनाते भी हैं बुखारी की रवायत है वो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला को हुजूर नबी ने फरमाया था ए अली अगर तुम्हारे जरिए से किसी एक को हिदायत मिल गई तो ये सिर्फ ऊंटों से ज्यादा बेहतर, तो ये जो बेचारा ईमान से महरूम होने वाला फर्ज है अगर हमारी किसी मेहनत की वजह से वो ईमान की तरफ वापस आता है तो वह बड़ी साफ बंदी, इसलिए तमाम अइमा हजरात बस नंबर एक अपने बयानात में ईमान की अहमियत और ईमान के लुटने के वाकयात और अपने अपने मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होने की तलकीन और तरवीज इन चीजों को अपना मौजू बनाए। इसी गरज के लिए आपको यहां दावत दी गई थी। जाहिर है दो या ढाई घंटे में सारी तफसील कैसे सुनाई जा सकती है, वरना असल में ये जो कारगुजारियां हैं ये कारगुजारियां जब तफसील के साथ आदमी सुनता है तब आदमी जरा सी भी गलत अगर होती है तो तड़पने लगता है कि क्या ऐसे भी हालात हैं। क्योंकि जिन लोगों को मालूम नहीं वो मानने को तैयार नहीं कि यहां हालात ऐसे हैं, बल्कि यहां कश्मीर में तो एक आलिम भी थे वो कहते हैं सब सवाल ही नहीं पैदा होता, फला आदमी तो हमारा रिश्तेदार है और वो लड़ने को तैयार, हालांकि वो रिश्तेदार जो है वो ईमान से महरूम हो चुका था। इसमें कुछ लोग जो है बात करते हुए कहेंगे कि साहब अब ठीक है मैं सर पर पानी डाल दे उससे क्या होगा, ईमान तो दिल की चीज है, ईमान दिल की। ये ऐसे जैसे लोग कहते हैं सब चेहरे पर पर्दा क्या करना, पर्दा दिल में होना चाहिए, ये धोखे के अल्फाज हैं। पर्दा दिल में होना चाहिए तो कपड़े ही निकालते, फिर कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसा नहीं है। जब कोई शख्स ईमान से महरूम हो और वह जब ईमान कबूल करना चाहेगा तो क्या करना है, कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, ईमान में दाखिल हो गया, इतना ही करना है। जब आदमी आलम कुफ्र से आलम ईमान में दाखिल हो जाते थे तो जुम्मे पढ़ने से बस दिल से यकीन करना है और उसके बाद फिर आलम कुफ्र से निकल कर आदमी आलम ईमान में दाखिल हो जाता है। जब निकाह होता है तो निकाह करता सिर्फ लफ्ज कबूल कहता है, इसकी दुनिया बदल जाती है। कहता अब तक तुम कंवारे थे और अब तक तुम बेगैर शादीशुदा थे, अब तुम शादीशुदा बन गए। ये खातून अब तक बाप के कंट्रोल में थी, अब ये शोहर के कंट्रोल में चली गई। ये आज तक गैर मन को आता, अब ये बीवी बन गई। तो एक ही लफ्ज से बोलने से तो ये सारा कुछ हो गया। तो ठीक इसी तरह से जब हम एक लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हैं तो कुफ्र से निकलकर ईमान में आ जाते हैं। जैसे कुफ्र से निकलकर ईमान में आ जाता है, इसी तरह से कुछ हरकत ऐसी हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन हरकत और अल्फाज के कहने से आदमी इस ईमान के दायरे से निकलकर कुफर में चला जाता है। उसका हरकत क्या है, कैसा वो चीज जो अलामत कुफर है, वो चीज जब हम इख्तियार करेंगे, और ये भी समझ में नहीं आता लोगों को क्या कि दुनिया में बातिल अपने बातिल को फैलाने के लिए किसी और चीज को साथ जोड़ता है। मसलन कड़ा बांधना, आज से 10-20 साल पहले मुसलमान सोच भी नहीं सकता था कि मैं हाथ में कड़ा लगाऊंगा, और मैं साहब कैसे ये कड़ा मुसलमान के अंदर फैलना चाहिए। कहा था पहले कड़ा लिखा, उसमें लिखा आयतुल कुर्सी, अब मुसलमान नौजवान ने कहा कड़ा है साहब क्या है, इसमें आयतुल कुर्सी है, ये थोड़े से राम राम वाला कड़ा है, ये तो आयतुल कुर्सी वाला कड़ा है। कुछ अर्से के बाद वो आयतुल कुर्सी तो खत्म हो गई, कड़ा रह गया। इसी तरह से कहता फैशनों के जरिए से अपनी चीज फैलाएंगे, साहब धागे बांधे जा रहे हैं, क्या होता है फैशन है। एक मुसलमान मुल्क में ये टीका जो है ये फैशन बना करके वहां पर फैलाया गया और वहां के मुसलमान औरतें जो है वो टीके लगाती थी, क्यों साहब ये बिंदिया है और क्या है फैशन बना। ठीक इसी तरह से कुछ मुशरिकाना हरकत योगा के रूप में लाई गई है, इसलिए बाकायदा इस पर फैसला हुआ है इस्लाम में किसी योगा की कोई गुंजाइश नहीं, कैसा वर्जिश करने के लिए उसूल बने हुए हैं। लेकिन वो आंखें बंद करके बैठना और आंखें बंद करके बैठना फिर कहना मेरे दिल में सुकून आ रहा है और मेरी हाथ आंगे जो है वो फैल रही हैं और मुझे जो मेरा मान जो है वो सेट हो रहा है और उसके बाद फिर इसी बीच में वो अल्फाज से बोल देने हैं, ये सारा कुफ्र का काम है। और इसीलिए उलमा ने फैसला किया है कि इस्लाम में कोई योगा नहीं, वो दरअसल योगा कोई वर्जिश नहीं है, योगा एक तहरीक है और इसीलिए उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। जिसने ये शुरू किया है सारी दुनिया में वो अपने मजहब को योगा यानी वर्जिश के रूप में ला करके वो फैला रहे हैं, क्योंकि अहले बातिल के बाद अपने बातिल को फैलाने के लिए वो कभी म्यूजिक की शक्ल में लाएंगे, कभी पैसे के रूप में लाएंगे, कभी किसी और के भी एक, ये तो इस्लाम दीन हक है कि जो साफ साफ कहता है ये दीन है इसको कबूल करो। उम्मत मुस्लिमात के भाई जब दीन की दावत देते हैं तो वो दावत देने के लिए न चाहते पैसा जोड़ेंगे ना है उनके पास, न चाहते कोई लालच जोड़ेंगे ना कोई लालच देने की चीज है, वह तो सीधे कहेंगे दीन हक यही है। और फिर बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि इसलिए मत इस्लाम कबूल करो कि आपको सुकून मिलेगा, नहीं, इसलिए इस्लाम कबूल करना कि इस्लाम दीन हक है और दीन हक कबूल करने के बाद हो सकता है अल्लाह का फैसला होगा तुमको मुश्किल आएंगी जैसे सहाबा को मुश्किल आएंगी। जहनी सुकून पाने के लिए लोग जब तलाश करते हैं वो कभी हिप्पी बनेंगे, कभी नाचने गाने लगेंगे, कभी बोझ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, क्योंकि उनको जहनी सुकून चाहिए, वो जहनी सुकून की तलाश में है। इस्लाम इसलिए नहीं है कि आपको जहनी सुकून देगा, हाँ जब अल्लाह ताला शानों का दीन कबूल करेंगे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे फिर चीजें नहीं भी होंगी तब भी जहन मुतमईन, और जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे सब कुछ होने के बावजूद जहन मुतमईन नहीं रहता। तो जो جب دین حق قبول کریں گے تو اس لیے نہیں کہ سکون مجھے چاہیے بلکہ اس لیے کہ دین دین حق ہے, ذمن میں سکون دیا جائے گا. پھر باقی مذہبوں کی طرف لوگ جا سکتے ہیں سکون پانے کے لیے, اسلام کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ سکون بلکہ اس لیے کہ یہ حق ہے, باقی سارے باطل ہیں. اور جب اس حق کو انسان پا لیتا ہے تو ضمن میں ساری چیزیں ملیں گی, اللہ کی رضا, آخر کی کامیابی, دنیا کا سکون, حیات طیبہ. چھجے کہنے جو وہ حیات طیبہ ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاج پہن کر کے مسجد نبوی میں تھے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو ذہنی سکون نہیں تھا. اور ابو جہل کا بہت قیمتی لباس پہنے لگے تب بھی ذہنی سکون. دین حق کی دعوت حق کی بنیاد پر دی جاتی ہے, نہ کہ سکون کی تلاش میں نہ پیسے کی تلاش میں, یہ تو اہل باطل کا کام ہے. تو ائمہ حضرات کو اس لیے دعوت دی گئی کہ وہ سمجھیں صورتحال کیا ہے, اور پھر اس صورتحال کے اندر وہ کس طرح آگ کی بجھانے میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ, اور جو جو کچھ اس کتابچے میں لکھا ہوا اس کتابچے کے مطابق جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین ثمرات نکل آئیں گے, اور سب کا کچھ نہ کچھ فائدہ نکل آئے گا. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی اور بولنے کی ہیں, ظاہر وقت اتنا نہیں ہے, اس لیے اسی پر اکتفا کر کے بس وہ حدیث ہمیں رکھنی ہے. جناب رسول اور مسلم نبی میں حدیث ہے, یہ حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدا الاسلام غریبا, میرا یہ دین شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ اسے نفرت کرتے, لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے, لوگ اس کو افرا سمجھتے, اس کو اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ دین پھیلے گا اور یہ پیارا لگے گا سب کو. پھر ایک دور آئے گا واپس آئے اردو کما بابا, پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پھر یہ ابھرا لگے گا, یہ ہضم نہیں ہوگا, یہ سوٹ نہیں کرے گا, یہ پسند نہیں آئے گا. یہی مفہوم جو بیان کرنا ہے. اور آپ نے سب وسیہ اردو کما بابا فتوبا لل غربا, اس زمانے کے ان غریبوں کو میرا مبارک باد ہو, اللہ مسلم ماسد ماس, جو اس وقت بھی جب لوگوں میں بگاڑ در بگاڑ آ رہا ہوگا اور قسم قسم کے بگاڑ ہوں گے, اس وقت بھی وہ لوگ لوگوں کے اندر سدھار لانے کی فکر کریں گے. فتوبا ان کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توبا اس سے زیادہ بشارت, اس سے زیادہ خوشخبری, اور اس سے زیادہ حوصلہ افزائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کی طرف سے بشارت ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے امیدیں بھی وابستہ ہیں اور بشارتیں بھی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہود نصارہ اور اسلام اور مرزائی چار طبقے ہیں جو چاروں طبقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بولتے رہتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے وہ یہودی بن کر آئیں گے, اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اس وقت ساری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی, لیکن وہ دنیا میں تب تک نہیں آئیں گے جب تک مسجد اقصیٰ موجود ہے. مسجد اقصیٰ جب گر جائے گی اور ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے یہودیوں کی عبادت کا, تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں آئیں گے. اس میں وہ انتظار میں ہے کب یہ حضرت مسجد اقصیٰ کو ہم کب گرائیں گے. اس مسجد اقصیٰ کی گرانے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں, ساری دنیا میں رکاوٹ کیا کیا ہے اور رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کریں گے تاکہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرا سکیں. اور مسجد اقصیٰ گرانے کے بعد حضرت سلیمانی تعمیر ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ساری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی. یہ تو ہے یہودیوں کا کہنا, لیکن آج اتنا میں یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کا حرام ہی بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں حرام ہی بیٹا اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا, یہ دونوں جمع نہیں ہونے چاہیے. مگر الکفر ملت واحدہ, اس وجہ یہ سارا ایک ہے. اور نصرانیوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہم نے یہودیوں کو جو نے ہمارے نبی کو پھانسی پہ چڑھایا ہم نے ان کو معاف کر دیا. آج کا پادری معاف کر رہا ہے ہر عیسائی اسلام کا جرم اور یہودوں کو معافی دے رہا ہے, اور وہ بھی بیٹھے جو تھے اعلان ہوا ہے. بہرحال عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسائی اسلام کو پھانسی دی گئی اور وہ وفات بھی پا گئے, اور اس کے ایک دن کے بعد یا تین دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور آسمان میں چلے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے, مرزائیوں کا, کہ حضرت عیسائی اسلام کو پھانسی لگ چکی ہے, وہ آسمان میں کہیں نہیں ہے, اور کہاں ہے بیچ میں کہتے ہیں کشمیر میں دفن ہے, بیچ میں کہتے ہیں فلسطین میں دفن ہے. مرزا اور صحیح اسلامی عقیدہ جو ہے وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کا بیٹا نہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بطن میں وہ آئے جس میں جو طریقہ ہے دنیا میں جو اللہ نے اصول بنایا ہے پیدائش کا, وہ اللہ نے وہ اصول نہیں اپنایا بلکہ اس سے ہٹ کر کے اللہ نے اپنی قدرت سے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح حضرت مریم کے بدن عطر کے اندر پہنچوائی بذریعے ایک مخلوق, بذریعے ایک فرشتہ. وہ فرشتے کون تھے, حضرت جبریل تھے, حضرت میکائیل تھے یا کوئی اور تھا, اس سے بحث نہیں ہے. براہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی ہیں, हजरत मरियम असम हमला हमला हजरत ईसा के साथ पैदा हुए हैं, हजरत ईसा के साथ पैदा हो गया तो यही हमारा अकीदा है। ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ, वो अल्लाह का बंदा था और अल्लाह का नबी था, अल्लाह का बेटा नहीं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी बगैर शादीशुदा होने की हालत में, और फिर जब यहूदी जमा होकर उनको फांसी देने के लिए जमा हुए हैं तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के लिए आसमान पर उठाया और यहूदी को रात के अंधेरे में उन बाकी यहूदियों ने पकड़ा, उसको कहा यही ईसा है, उसको फांसी चढ़ा दिया और वो इसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती शक्ल थी। अगले दिन सुबह उन यहूदियों का आपस में खुद इख्तलाफ हो गया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम फांसी लग गए तो हमारा साथी कहां गया, और अगर हमारा साथी फांसी चढ़ गया तो ईसा कहां गया। इसी में उनका आपस में टकराव हो गया और वो टकराव फिर वो हल नहीं हो सका और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा। हमारा अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, जिंदा हैं, कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, उम्मत मोहम्मदी बनकर के आएंगे, उस वक्त सारी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, कहीं कोई मजहब बाकी नहीं बचेगा, ईसाइयत का भी खात्मा हो जाएगा, सलेब को वो तोड़ देंगे जिस सलेब के बारे में ईसाइयों का अकीदा है कि इस सलेब के जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फांसी दी गई और फांसी के साथ लटकाए रहते हैं और हर जगह वो सलेब बनाते हैं, बल्कि यहां भी मुसलमान ने अपने घर के सामने सलेब का नक्शा बनाया, उस सलेब को अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद फिर खिंजीर को इन्होंने हलाल कर रखा है उसको हराम कर देंगे और फिर सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी, हर ईसा अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे, 40 साल दुनिया में जिंदा रहेंगे और रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर सलाम अर्ज करेंगे और रोज़े अक़दस से बाद में सलाम का जवाब आएगा और वो सुने देंगे और उसके बाद भी 40 साल गुजारने बाद उनकी वफात होगी तो रोज़े अक़दस के अंदर ही उनको दफन किया जाएगा। यह है हमारा अकीदा हर ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। यही मसला नहीं जो है वो कभी कभी धोखा भी देते हैं। चाहे अभी इसी हफ्ते में एक नौजवान मिला, कल जो मुझे एक पादरी मिला था उसने कहा आपके कुरान में ईसा का तस्करा, हमने कहा हाँ क्या लिखा है उसने, ईसा आसमान में है और आपका नबी कहां कहा जमीन में, कहा अच्छा हमारा नबी ऊपर है तुम्हारा नीचे, ठीक अच्छा वो हमारा नबी उसके बारे में क्या लिखा है तुम्हारे कुरान में, उन्होंने कहा हमारे कुरान में लिखा है वो जिंदा है, तुम्हारे नबी के बारे में क्या लिखा है, इसने कहा हमारे नबी के बारे में लिखा है कि वो वफात पा चुके हैं और कब्र में जिंदा, कहा भाई हमारा नबी जिंदा है ऊपर, तुम्हारा नबी मुर्दा और नीचे, और किसकी बात चलनी चाहिए ये बताओ, चुप हो गया उससे समझ नहीं आएगा मैं क्या कहूंगा। जिस तरह से वो धोखे देते हैं, सवाल यह है सारे काम आसमानों में जिंदा किसने कहा, कुरान ने, और किसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा कि जब वो दुनिया में आएंगे तो मेरे दिन पर चलेंगे, तो अब उस दिन पर चलना है जो दुनिया में, एक बात। दूसरी बात यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो दीन आया था वो तो है ही नहीं दुनिया में, न वो तौरात है, न वो इंजील है, न ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बात दुनिया में मौजूद है, जब वो दीन ही मौजूद नहीं है तो ईसाई पर जो चलेगा वो बातिल दीन पर चल रहा है। इस वक्त की ईसाइयत का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ईसाइयत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारा जाली ईसाइयत है, इस वक्त तो सारी जाली ईसाइयत है। वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ईसा खुदा का बेटा और बड़े फख्र के साथ कहते हैं उसको फांसी भी चढ़ा दिया और अल्लाह ने कहा दुनिया में जितने लोग गुनाह करेंगे सारे गुनाहगारों के बदले में ईसा की कुर्बानी मैंने ले ली, अब दुनिया में जितने जराइम तुम करोगे तुम्हारे गुनाहों के बदले में मैंने कुर्बानी ले ली। ये तो बच्चे भी ऐसा नहीं कह सकते कि जुर्म करेगा वो सजा देंगे किसी और को, उनका अकीदा यह है। तो आज की ईसाइयत का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ईसाइयत से कोई ताल्लुक नहीं, आज के तौरात इंजील का उस तौरात और इंजील से कोई ताल्लुक नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दुनिया में जो नाजिल हुई थी। तो बातिल दीन की तरफ दावत दी जा रही ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की तरफ, हक दीन वो है जो महफूज है और वो यही इस्लाम है, कुरान में महफूज, हुजूर के इशारात में महफूज। बहरहाल अइमा हजरात ईसाइयत को पढ़ें और जो दूसरे बातिल उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर अपनी अपने खुतबों में इसी को अपना मौजू बनाएं और मुसलमान बच्चों को मस्जिदों से मुतालिक मकातिब कायम करें और उनको दीन की बुनियादी बातें सिखाएं। ये बहुत बड़ा काम इस वक्त होगा, एक दौर होता है जब इस्लाम फैलाना होता है और एक दौर होता है जब इस्लाम बचाना होता है, अगर हम फैला नहीं पा रहे हैं तो कम से कम बचाने की फिक्र हमें करनी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हमें नासिर करे।